नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि भारत इस साल के अंत तक तपेदिक को खत्म कर देगा। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर में स्कूलों को शीतकालीन छुट्टियों के 6 मार्च तक को बढ़ा दी गई है और आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी में अफगानिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोप आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। राष्ट्रपति वॉन डेर लेन 22 यूरोपीय संघ आयुक्तों के साथ भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। ये यूरोपीय संघ के कॉलेज ऑफ कॉमर्स की भारत की पहली यात्रा है और पिछले साल दिसंबर में कार्यभार संभालने के बाद नए कॉलेज ऑफ कॉमर्स की यूरोप से बाहर पहली यात्रा होगी। इस यात्रा से बढ़ते अभिसरण के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद है। यूरोपीय आयोग के उपायुक्त हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित बस में सवार होकर हैदराबाद हाउस पहुंचे। बस का टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से विकसित और संचालित किया गया है। भारत और यूरोप 2024 से रणनीतिक साझेदार है और उनके द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में विस्तार की ओर अग्रसर कर रही है। ये संबंध बहुआयामी है और व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों को कवर करते हैं। यूरोपीय संघ में हाल के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 90% की वृद्धि हुई है। अक्षय ऊर्जा और हाइड्रोजन क्षेत्र में भारतीय और यूरोपीय कंपनियों के बीच व्यापक उद्योग सहयोग है। यूरोपीय संघ और ऊर्जा पर भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल हो गया है। भारत दौरे पर आए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ इस साल के अंत तक एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर विचार कर रहे हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वे इस साल के दौरान इसे पूरा करने के लिए प्रयास करने पर सहमत हुए हैं। सुश्री लेन ने कहा है कि यूरोपीय संघ और भारत के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता दुनिया में कहीं भी अपनी तरह का सबसे बड़ा सौदा होगा। उन्होंने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के पास भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर को जीवंत करने का ऐतिहासिक अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोप सुरक्षा और रक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ दूसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लिया। यूरोपीय आयोग की तकनीकी संप्रभुता, सुरक्षा और लोकतंत्र के लिए कार्यकारी उपाध्यक्ष हेना वर्कुन ने व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक और स्टार्टअप अनुसंधान एवं नवाचार के लिए यूरोपीय संघ आयुक्त एकातरीना जारवे ने बैठक में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्याय आधारित विकसित भारत के निर्माण में फॉरेंसिक विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। गांधीनगर में आज राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने एक ऐसे विकसित भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला जो भारतीय विरासत को आधुनिकता के साथ जोड़ता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। राष्ट्रपति ने समय पर न्याय प्रदान करने में फॉरेंसिक विज्ञान के बढ़ते महत्व पर जोर दिया, खासकर अपराध की लगातार बदलती प्रकृति के मद्देनजर। राष्ट्रपति मुर्मू ने फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली महिला स्नातकों की बढ़ती संख्या पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। दीक्षांत समारोह में विभिन्न फॉरेंसिक विज्ञान धाराओं के 1500 से अधिक छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज कहा है कि इस वर्ष तक भारत से तपेदिक यानी टीबी को समाप्त करने के लिए सभी प्रयास जारी है। उन्होंने कहा है कि हालांकि दुनिया में 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुके तपेदिक को समाप्त करने का संकल्प लिया है, लेकिन इस संबंध में जिस तरह से काम चल रहा है वो शानदार है और देश इस वर्ष तक तपेदिक को समाप्त करने की उम्मीद कर सकता है। आज ओडिशा के पुरी में भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अच्छे अनुकरणीय अभ्यास एवं नवाचार पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को उद्घाटित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि सरकार द्वारा 2017 में नई स्वास्थ्य नीति अपनाने के बाद कई सुधार हुए हैं। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर IMR के वैश्विक कमी दर से दोगुनी कमी आई है, जबकि मलेरिया पर काफी हद तक लगाम लगी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव और IB प्रमुख के साथ साथ गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। पंजाब सरकार ने युद्ध या ऑपरेशन में ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर सैनिकों के लिए अनुकूल राशि में पर्याप्त वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नए प्रावधानों के अनुसार 76% से 100% विकलांगता वाले सैनिकों को अब 20 लाख रुपए की जगह 40 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरह 51% से 75% विकलांगता वाले सैनिकों को 10 लाख रुपए की जगह 20 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि 25 से 50% विकलांगता वाले सैनिकों को अब 5 लाख के बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में सरकार आज भोपाल के बंद पड़े यूनियन कार्बाइड संयंत्र से इंदौर के पास पीथमपुर में एक निजी संयंत्र में ले जाए गए जहरीले कचरे को जलाने की ट्रायल प्रक्रिया शुरू कर रही है। 56 दिनों की तैयारी के बाद कल पीथमपुर साइट पर यूनियन कार्बाइड के खतरनाक कचरे से भरी 5 कंटेनर खोले गए। ट्रायल कई चरणों में आगे बढ़ने वाला है और प्रत्येक बैच के निपटान में 2 से 4 दिन लगने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज लगातार 3रे दिन भारी बारिश और बर्फबारी जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। बर्फबारी और भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है और राज्य के 4 जिलों में आज सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है। उत्तराखंड में आज भारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में हिमस्खलन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई मजदूरों के बर्फ के नीचे दबे होने की आशंका है। ये घटना राज्य में माणा को घसतौली से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। अब तक 10 मजदूरों को बचा लिया गया है और बर्फ के नीचे फंसे अन्य लोगों को बचाने के लिए बचाव अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर समेत कश्मीर क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में कल शाम से मध्यम से भारी बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई। भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग रामसू और काजीगुण सड़क के बीच बर्फ जमा होने के कारण बंद है। सरकार ने गीले मौसम की स्थिति के कारण केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश भी बढ़ा दिया है। कश्मीर घाटी में मौजूदा मौसम की स्थिति के बीच उच्चतर माध्यमिक स्तर के स्कूल अब 7 मार्च 2025 को फिर से खुलेंगे। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा या बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर साल 28 फरवरी को प्रख्यात भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अभूतपूर्व खोज के लिए सर रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर पूरे देश में विभिन्न थीम आधारित विज्ञान संचार गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसरो के अध्यक्ष डॉ वी नारायणन ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में इसरो की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी है। ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज ग्रुप बी के मैच में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी है। ये मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में दोपहर 2:30 से खेला जा रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 36 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 188 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया 3 अंकों के साथ अंक तालिका में 2रे स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान 2 अंकों के साथ 3रे स्थान पर बना हुआ है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।